listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Monday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But just a polite reminder, we do not address company-specific queries. Listeners, to connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor, Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे व्यापार जगत अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 बस याद रखें कि हम किसी खास कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
पहले हेडलाइंस सरबजीत कौर से
Benchmark domestic indices plunge around 2.5%. Sensex dives over 1,800 points. Nifty closes around 22,500. Major Asian stock markets tumble. And Prime Minister Narendra Modi addresses Lok Sabha on the ongoing West Asia conflict.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगभग 2.5% की गिरावट सेंसेक्स 1800 अंकों से ज्यादा लुढ़का निफ्टी लगभग 22,500 पर बंद हुआ एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी लुढ़के और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया
And Subodh, before we go any further in the program, let's just remind our listeners once again that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Ji, aur aaj sabse pehle nazar dale hum share bazar par. Desh ke share bazaron ke pramukh suchkankon mein aaj bhari bikwali ki wajah se lagbhag 2.5% ki giravat darj ki gayi. सेंसेक्स 1837 अंक यानी 2.46% गिरकर 72,696 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 602 अंक यानी 2.6% लुढ़ककर 22,513 पर आ गया आज कमजोर वैश्विक संकेतों के साथ कारोबार की शुरुआत भी काफी ढीली रही फिर समय के साथ बिकवाली का दबाव बढ़ता गया और सूचकांक लगातार गिरते गए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब शेयर बाजार लगभग एक साल पहले के यानी अप्रैल 2025 के स्तर के आसपास पहुंच गए हैं
Benchmark domestic equity indices plunged around 2.5% today amid a broad-based sell-off. The Sensex nosedived 1,837 points or 2.46% to close at 72,696, while the Nifty tumbled 602 points or 2.6% to settle at 22,513. Earlier, markets opened with a sharp gap down of over 1%. Amid weak global cues. As the session progressed, selling pressure intensified, dragging the indices lower and leading to a significantly weaker close. Meanwhile, as the West Asia conflict escalated, the stock market declined to levels similar to what they were in April 2025.
और देखते हैं कि आज सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है तो 30 में से 26 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर गौर करें टाइटन में 6.2% ट्रेंट में 5.9% और अल्ट्राटेक सीमेंट में 5.2% की गिरावट देखी गई इसके उलट एचसीएल टेक में 1.8%, पावर ग्रिड में 1.4% और इन्फोसिस में लगभग 0.3% की बढ़त देखी गई.
Among the sectoral indices at the BSE, all sectors ended in the negative territory. Among the top drags, consumer durables shed 4.9%, realty as well as metal plummeted are almost 4.8%, and services lost 4.7%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,798 companies declined, 635 advanced, and 123 remained unchanged.
और रुपए पर नजर डालें, आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 26 पैसे गिरकर 93.97 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.66 पर कारोबार कर रहा था.
एंड सुबोध, द न्यूज दैट इज हॉगिंग द लाइमलाइट टुडे,
बड़ी खबर है. वैसे ये खबर हमारे देश के जो शेयर बाजार बंद होने के बाद आई है, इसलिए इसका असर उन पर दिखाई नहीं दिया है.
खबर बहुत बड़ी है और
बिल्कुल, और मुझे लगता है अभी से यूरोपीय बाजार पे इसका असर दिखना शुरू हो गया.
यस, एब्सोल्युटली. वेल, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड अ 5-day एक्सटेंशन टू हिज डेडलाइन फॉर ईरान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, सेइंग द यूएस विल होल्ड ऑफ ऑन पावर प्लांट स्ट्राइक्स फॉर 5 days. मिस्टर ट्रंप मेड दिस अनाउंसमेंट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट जस्ट आवर्स अहेड ऑफ द अर्लियर डेडलाइन. He noted that recent discussions between US and Iranian officials have been very good and productive, expressing optimism that they could lead to a complete and total resolution of the conflict. He said the suspension of his threat to attack Iranian power plants was subject to the success of the ongoing meetings and discussions. The US president added that negotiations are set to continue throughout the week as both sides work towards a possible diplomatic breakthrough. Meanwhile, Iranian state media reported that Tehran has firmly rejected the prospect of talks with Washington, emphasizing that no direct dialogue is currently taking place between the two sides. We'll come back to Shishir for further discussion on this. Meanwhile, we have our first caller from Delhi. अमित जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार सरजीत. सरजीत मैडम, आपने जो अभी बात की ना यूएस प्रेसिडेंट की जो बात
जी,
उसी को अगर बात सवाल भी मेरा है कि सर, जैसे ईरानियन ऑफिशियल ने इनको खारिज करा है, तो क्या ये दोनों में विरोधाभास नहीं लग रहा सर? यूएस कह रहा है कि 5 दिन में हम डायलॉग करेंगे या फिर हम मोहलत दे देते हैं, तो ईरानियन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि हम कोई डिप्लोमेसी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे. तो इसी पे सर मुझे असमंजस है. अभी तुर्की और इजिप्ट और पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे बात आई है, तो कहाँ हद तक सही है सर ये? बहुत बहुत धन्यवाद.
देखिए अमित जी, जब इस तरह की बातें की जाती है तो दूसरा पक्ष सीधे सीधे आकर के नहीं कह सकता. उसकी दो वजह है. पहली बात, आप ध्यान रखें कि ईरान में जो शीर्ष नेतृत्व थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में वो कहें कि हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उचित नहीं होगा. तो ईरान की तरफ से जो भी खंडन आया है, लेकिन अमेरिका का ये कहना बाजारों के लिए बहुत एक सकारात्मक संकेत लेकर के आया है. और अभी की ताजा स्थिति है कि जो डाउजोन्स फ्यूचर है या अगर हम नैस्टेक 100 फ्यूचर की बात करें, उन दोनों में उछाला. इनफैक्ट डाउजोन्स जो फ्यूचर है वो लगभग 1000 अंक उछला है, लगभग 2.2% के करीब की बढ़ोतरी देखने को मिली है. कच्चे तेल में हमने गिरावट देखी, तेज गिरावट देखी है, वो $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है ब्रेंट जो है. तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बाजार ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को एक सकारात्मक तरीके से तो लिया है, लेकिन अगले 5 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है. किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है, क्या वाकई में कोई बातचीत होती है कि भी नहीं, ये सारे सवाल हैं. लेकिन एक संकेत तो आया, वहां से शुरुआत तो हुई, जो अभी तक लग रहा था कि हम चौथे सप्ताह में आ गए हैं और कोई उसका अंत होता हुआ दिख नहीं रहा था. अभी भी हम नहीं कह सकते कि अंत हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अंत की शायद एक शुरुआत हुई हो.
जी, और शिशिर, जो आपने अब काफी विस्तार से बता ही दिया कि जो ट्रंप का बयान आया है उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है. हालांकि आज हमारे बाजार बंद होने के बाद ये बयान आया तो हमारे बाजार में काफी गिरावट हम देख चुके हैं, लेकिन अभी आपने ही बताया जैसे वो अमेरिकी बाजारों का जो फ्यूचर्स है वो काफी अच्छा, थोड़ी देर में बाजार खुलेंगे तो अमेरिका का हाल दिखेगा। वैसे यूरोप के जो बाजार हैं उनमें काफी सकारात्मक रुख दिख रहा था, लेकिन इससे पहले बातचीत से पहले मैं एशिया के बाजारों का हाल बताना चाहता हूं सरबजीत की। आज प्रमुख शेयर सूचकांकों में एशिया में सभी प्रमुख बाजारों में गिरावट थी। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6.5%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 3.6% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग 3.5% से अधिक, जापान का निक्केई लगभग 3.5% और सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम इंडेक्स में भी 2.2% की गिरावट रही थी, यानी ओवरऑल काफी भारी गिरावट थी। लेकिन यूरोपीय शेयर बाजार, वही जैसा आपने कहा कि वो जो अभी सरबजीत ने खबर पड़ी थी ट्रंप वाली, तो उसका असर यहां दिखाई दे रहा है कि सकारात्मक रूप के साथ कारोबार कर रहे हैं यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार। और अभी समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डैक्स लगभग 2% ऊपर था, फ्रांस का कैक 1.4% ऊपर था और लंदन का फुटसी लगभग 0.2% की बढ़त के साथ चल रहा था।
सुबोध जी, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें।
हाँ सर, जैसे मार्केट ऐसे हो रहा है तो मैं हर एक महीने जो है आईटी फर्मा का जो है मैं एसआईपी कर रहा हूँ अच्छे चुनिंदे शेयर में, और हैंगसेंग का मैं भी करूँ क्या? हैंगसेंग ईटीएफ है।
हैंगसेंग यानी कि आप हांगकांग शेयर बाजार के जो ईटीएफ हैं उनमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि छोटे छोटे एसआईपी करना इस समय में काफी फायदेमंद है, क्योंकि जब कीमत नीचे होती है तो आपके पास ज्यादा यूनिट्स आती हैं और जो आगे चल करके थोड़ा भी एप्रिसिएशन होगा तो उसका फायदा होगा। तो आपने एसआईपी को बिल्कुल नहीं रोकना है और आपकी अच्छी रणनीति है कि हर महीने आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आज आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने ज्यादा गिरावट देखी, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि पावर कंपनी और आईटी कंपनीज में आज हमने अच्छी बढ़त देखी, जबकि बाजार 600 पॉइंट लगभग ज्यादा गिरा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, और जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर इस समय वो तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा एक जैसे ही ये परिस्थितियां बदलेंगी तो आईटी की डिमांड काफी बढ़ेगी, क्योंकि जो ढांचा है वो काफी हद तक उसको नुकसान पहुंचा है अलग अलग देशों में, तो आईटी क्षेत्र की मांग काफी बढ़ेगी और उसका फायदा हमारे देश की आईटी कंपनियों को मिलेगा। तो आपकी ये रणनीति बिल्कुल सही है, महीने दर महीने किस्तों में कुछ एक क्षेत्र को लेकर के आप करते रहें। और फार्मास्यूटिकल हमेशा से एक डिफेंसिव स्टॉक रहा है, किसी भी तरह की परेशानी हो लोग दवा जो है वो बंद नहीं करते हैं।
Shishir, taking cue from just what you said, you spoke about the IT sector, you touched upon the pharma sector too. Now, Shishir, we are seeing so much of movement in the stock markets worldwide. You just spoke about the movement in the Dow Jones. There's so much of uncertainty about the talks relating to the West Asia situation. We also heard the reassuring words of Prime Minister Narendra Modi today in the Lok Sabha. Now, in the backdrop of all this, what's your expert advice to investors? How should an average investor handle all this? Stay calm, get perturbed? What's the kind of picture of the market that's conjuring up?
See, in this current market scenario, one very important thing which everybody has to remember, that we do not know what is the bottom. If somebody is saying that now the market has bottomed out, or this is going to be the bottom, or this is the level where we are going to see some kind of support, and then all of a sudden you find that that level has also breached. So there is nothing called support level, there is nothing called bottom out. So first of all, like you rightly use the word, how one can be cool and composed. I mean, of course, in the current scenario, it's very difficult to say that I will be very cool, I will not be perturbed by what is happening in and around us, because at the end of it, it's our money. My simple advice is that whenever there is a dip, go for a small buy in the value stock. All the value stocks, like the majority of Sensex shares, are available at a very, very good valuation. Go for that. Small buy. Don't go for a very big buy. And current level, if you can remember, we were having some kind of Sensex level of 81,000 and Nifty at also at a very high level. From there, we have seen some, it's a major downfall there. So it's giving you an opportunity, but only do when there is a dip. And wherever there is a, any kind of blip into that, when there is a slightly upswing into that, go and book the profit. Don't hesitate in booking the profit and don't think about that this much notional gain I have to that. So my advice would be stop loss and stop gain. Both should be applied at the same time.
जी, शशिर एक और हमारे यहाँ आने वाले मेहमान की बात याद आ गई मुझे, मैं दोहरा दूं कि जो आपने कहा कि बॉटम कुछ भी नहीं होता है, कि आप किसी लेवल को नहीं कह सकते, तो वो हमेशा कहते बॉटम तो जीरो ही होता है क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है. तो आप मानकर चले कि जो गिरावट है वो जीरो तक भी जा सकती है, तो किसी भी चीज को आप नीचे ना माने. ये अगले कॉलर इंतजार कर रहे हैं, भोपाल से शंकर हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
नमस्ते मार्केट
नमस्कार
जी.
नमस्कार
सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हैज गॉन अप टू 4.5%. व्हाट इज द इम्प्लीकेशन और रिपरकशन और इफेक्ट ऑफ दिस ऑन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी इन जनरल, एंड जस्ट इन दिस कनेक्शन हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडियन रूपी. इज इंडियन रूपी लोअर्ड और गोइंग डाउन because RBI may be not intervening so that to discourage FII to pull out money, or is there any this kind of any such things happening or in being behind the curtain happening?
See, whenever interest rate in US is high, it is always giving an opportunity to FPI to withdraw money from emerging economies and go back to US, and that is what we are seeing. I mean, if you go by the current scenario or what we can say FPI net selling, it's very high. And not just the global scenario, but also the US Treasury yield is also playing a very, very important role. So when you have a higher FPI outflow, when you have very high crude import bill, when you have very high gold import bill, so certainly it will have some impact on the rupee, and that is what you are seeing the pressure. So at this moment, the important thing is that what kind of rupee level we are seeing. I mean, 92, 93, 94, of course it will have some kind of benefit on the export competitiveness, but for the time being it is something which we have to consider, that what could be the next level. And as I was telling just before this question, there's nothing called bottom level, this is nothing called that this is the lowest level. It could be going much lower than what me and you can think about that.
All right, moving on to the next big story of the day. The Reserve Bank of India today infused 79,256 crore rupees into the banking system through an overnight variable rate repo, VRR, auction to ease liquidity conditions. The central bank said the funds were injected at a cutoff and weighted average rate of 5.26%. However, the liquidity injected was lower than the notified amount of 1 lakh crore rupees despite tight liquidity conditions due to advance tax outflows.
Or शशि, इसको हम सिर्फ तकनीकी कदम माने, कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि देखिए बाजार में नकदी जो कहते हैं कि उसकी स्थिति को आपको बनाए रखना है दो कारणों से. पहले कि आप 15 जो मार्च था, हमारा चौथा इंस्टॉलमेंट था एडवांस टैक्स का, तो चाहे अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, उन्होंने भुगतान किया है. कॉर्पोरेट टैक्स में जो बढ़ोतरी है वो लगभग 6.4% की हुई है 4 इंस्टॉलमेंट के बाद, और उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हमने कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स में देखी है. हालांकि जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स है वो डीग्रोथ रहा, यानी कि वहां पर नकारात्मक हमने बढ़ोतरी देखी है. तो इसका मतलब है कि कंपनियों ने एडवांस टैक्स ज्यादा दिया है, अब उनके पास पैसे नहीं होंगे. वहीं दूसरी ओर देखिए कि उनके लिए जो खरीद की लागत है वो बढ़ रही है, खासतौर पे अगर वो आयातित कोई भी कच्चा माल ले रहे हैं, या मान लीजिए कि तेल और गैस की कोई कंपनी है जिनको बाजार से जिनको स्पॉट बाइंग करनी है गैस या क्रूड की, उसके लिए उनको ज्यादा भुगतान करना है. तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बाजार में नकदी का आना, ये तकनीकी शब्द जो है VRAR और वो सारी चीजें हैं, आम आदमी भले ही को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकता है कि अच्छा वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है और इसमें क्या होता है, लेकिन सिंपल सा इसका सरल शब्दों में कहें, बाजार में नकदी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नकदी की जरूरत है,
तरलता की जरूरत है
और बाजार में खपत को बनाए रखना है. आप याद रखिए कि हमारा नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, और अगर माफ कीजिएगा, अगर खपत में किसी भी तरह की कमी आती है तो चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही की जो विकास दर है उस पर और ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। वैसे ही जो युद्ध की स्थिति है उसने हमारे विकास दर को कहीं ना कहीं तो प्रभावित किया ही है।
जी, और युद्ध की बात है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया है। इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है।
जी, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपनी आवश्यकता का 60% एलपीजी आयात करता है और आपूर्ति में अनिश्चितताओं के कारण सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान संकट से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और भारत में इसके प्रभाव को कम करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों ने यह सुनिश्चित किया है कि खाद्य भंडार भरा रहे। उन्होंने कहा कि इस मौसम में उचित बुआई सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसानों पर वैश्विक संकटों का बोझ ना पड़े। शिशिर, हम देखें जो एक हमेशा आम आदमी की समस्या जो दिख रही है अभी एलपीजी की, अब हालांकि उसको लेकर काफी राहत की सांस ले रहे हैं लोग अभी, और लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिस पर अभी प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया है, खाद्य सुरक्षा, खाद्य भंडार, उर्वरकों की हालत और ये भी कहा कि जो अभी आप कह रहे थे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, तो भाई हम अछूते तो नहीं रह सकते लेकिन हम निपटने के उपाय कर रहे हैं। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले एक कॉलर के पास चलते हैं। दिल्ली से सुमित हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर, मेरा बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने कॉल करा था बट जब तक रिप्लाई करते तो समझ नहीं आ पाया था उस टाइम तक। सर अभी एज एवरीबडी नोज कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है एंड एज आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग तो आई एम बिट कंफ्यूज कि SIP इज बेटर और ETF आर बेटर, नंबर वन दिस थिंग। एंड नंबर टू सर, जब अभी तो ये मार्केट डाउन चल ही रहा है बट ऑब्वियस, बट बिकॉज जब ये मार्केट, जब ये वॉर एंड एवरीथिंग जो भी ये सारी चीजें चल रही है जब ये खत्म हो जाएंगी तो डज इट हैपन लाइक कि ये ऑल द वे पॉजिटिव आ जाता है या अगेन उसके बाद भी ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टेक इट्स ओन टाइम एंड टू कम अप। थैंक यू।
सुमित, आपके पहले प्रश्न का जवाब जो है कि आपने कहा ETF या फिर SIP, मेरा ये मानना है कि आप इसको बराबर में बांट रखें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए की रकम है और मान लीजिए कि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे कम की है तो आप उसमें से 40 रुपए जो हैं वो आप SIP में डालें, 40 रुपए जो हैं वो ETF में डालें और बाकी जो 20 रुपए है वो अगर आप सोने में डालते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और भी अगर आप इसको थोड़ा सा और भी अगर कर सके तो जो 40 रुपए आपने ETF में डालना है उसमें से 30 डालें और 10 रुपया जो है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट स्कीम्स में डालें। तो इस तरीके से अगर आप रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे, आवंटन करेंगे तो आपके लिए क्या है कि जो से बचने का उपाय भी आपने करना है, जिसको तकनीकी भाषा में हम हेजिंग कहते हैं। अब देखिए, हेजिंग के लिए बड़े निवेशकों के पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का विकल्प होता है। आपके लिए, एक छोटे निवेशक के लिए, और आपने कहा कि अभी अभी आपने निवेश करना शुरू किया है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप आवंटन करें तो आपके लिए एक फायदा होगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर कहूंगा, सलाह दूंगा, रोज रोज बाजार मत देखिएगा और रोज रोज अपने SIP की कीमत या NAV मत देखिएगा। तनाव बहुत देता है और उसके बाद घबराहट होती है और फिर आदमी कहता है सब बेच करके निकल जाओ। तो रोज रोज मत देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना कि बाजार में जो आता है ना, निवेश जो करता है ना, वो केवल पैसे का नहीं करता, धैर्य का भी निवेश करता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, बाजार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, यह हकीकत है। दूसरा, आपने पूछा है कि जब सामान्य स्थिति बनेगी, उम्मीद करते हैं जल्दी ही बननी चाहिए, हम सभी के मन में यही ख्वाहिश है, तो उस समय क्या होगा? एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाजार जितनी तेजी से गिरता उतनी तेजी से उठता नहीं है, और खासतौर पे हमने 2008 की बात करें, चाहे हम 2020-21 की बात करें या हम 2012 की बात करें जब यूरोपीय संकट हुआ था, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। लेकिन उसका एक फायदा क्या होता है कि जब बाजार नीचे गिर चुका होता है, एक मौका देता है आपको खरीदारी करने का, क्योंकि ऊंचे स्तर पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको इंतजार करना होता है कि और ऊंचा जाएगा तभी आप कुछ कमा पाओगे। लेकिन नीचे और मध्यम स्तर पर आप खरीदारी करते हो तो आपके लिए मुनाफा कमाने के विकल्प काफी जल्दी आते हैं। ये रणनीति अगर बना के रखिए तो उम्मीद करते हैं फायदा होगा, और फायदा होगा हमारे साथ जरूर साझा करिएगा, लड्डू जरूर खाएंगे
जी।
दैट्स इंडीड अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस शशर, कीप काम, कीप पेशेंस, हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ होराइजन इफ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट।
और सरबजीत, इस पर एक और बात है, कहावत है जो अभी सलाह दे रहे थे शशिर, उसी पर कहते हैं बाजार में कि बाजार जब चढ़ता है तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जब नीचे आना होता है तो लिफ्ट से नीचे आता है। तो हमेशा याद रखें। और जी, प्रधानमंत्री के बयान पर हम लौटते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो काफी विस्तृत, अगर हम जहां तक कल्पना कर सकते हैं प्रभाव की, अभी जो संघर्ष चल रहा है उन्होंने लगभग हर बिंदु को एड्रेस किया है
जी। अब इसको कल से जोड़ के देखिए, कल जब शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और उसमें तमाम चर्चाएं हुई अलग अलग क्षेत्रों की, और फिर यह हुआ कि एक मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाया जाएगा जो कि सरकार की जो एक सोच है उसके हिसाब से काम करने के लिए। आज संसद के जरिए उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई जो परिस्थितियां हैं वो विषम है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब नेतृत्व आकर के कहता है कि परिस्थितियां विषम है, अब यहां पर हम आप मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। एक दूसरा, उन्होंने आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो राज्य सरकारों से उन्होंने कहा कि भाई ये जो काला बाजारी हो रही है ना, ये जो बाजार में घबराहट वाली जो बुकिंग करने का है कि हमारे पास एक सिलेंडर है एक और रख लेते हैं। देखिए, हम हर कोई एक सामान्य मानसिकता में यही सोचता है कि एक और सिलेंडर रख लो, एक और सिलेंडर रख लो, लेकिन जब काला बाजारी शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के कहा था, एक तरफ हमारे पास जो खाद्यान्न के भंडार है यानी कि हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा हुआ है, रबी की भी पैदावार अच्छी उम्मीद है, और खरीफ की बुआई में लगभग हमारे पास 2 महीने का समय है, यानी कि इस दौरान जो है वो खाद को लेकर के रातों रात आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली। हो सकता है कि जब ये परिस्थितियां सामान्य हो तो खाद की आपूर्ति और बेहतर हो सकेगी और खरीफ की बुआई पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन खरीफ की बुआई के लिए जितने खाद की जरूरत है उसका बफर स्टॉक अभी उपलब्ध है।
All right, after this, let's take a look at how the oil prices behave today. Global crude oil prices fell today after US President Donald Trump's comment to postpone all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for 5 days. Brent crude was trading 5.2% lower at $106.31 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 5.6% down at $92.76 per barrel when reports last came in. Gold and silver prices declined today due to profit taking, a stronger US dollar and rising real yields. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 5.1% down at 1,37,149 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.6% down at 2,18,581 rupees per kilogram a short while ago.
जी, और एमसीएक्स का हाल देखें तो अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 4.6% गिरकर 1,37,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, और मई वायदा की चांदी भी 4.3% के नुकसान से 2,16,950 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई। तो छोटा सा कमेंट शिशिर की, ये बाजार गिरने के साथ सोना चांदी की चमक भी क्यों कम हो गई?
डॉलर मजबूत जब जब होगा सोना चांदी कमजोर होगा
जी। लेकिन सारे एसेट क्लास अभी तो कमजोर दिख रहे हैं।
नहीं, सोने को लेकर के खास बात होती है क्योंकि युद्ध के समय में समझा जाता है सोना मजबूत होगा, वो नहीं हो रहा
जी। शशिर, कार्यक्रम में आने, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जी। धन्यवाद।
लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Benchmark domestic indices plunge around 2.5%. Sensex dives over 1,800 points. Nifty closes around 22,500. major Asian stock markets tumble, and Prime Minister Narendra Modi addresses Lok Sabha on the ongoing West Asia conflict. And that's it in this edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।